ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वह लोगों को संबोधित भी करेंगे। महोत्सव का लक्ष्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। इस 4 दिवसीय महोत्सव का विषय है वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए मजबूत ग्रामीण भारत का निर्माण। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत पर विशेष ध्यान देते हुए ग्रामीण जनसंख्या के बीच आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। महोत्सव के दौरान उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आप सरकार ने 10 वर्ष के शासन के दौरान दिल्ली को आपदा की ओर धकेल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 4,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के दौरान यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनता को पानी और सीवर सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है। श्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए लगभग 1,700 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। प्रधानमंत्री ने 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में जनरल पूल आवास या आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने द्वारका में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। भारत ने लद्दाख में 2 नई काउंटी स्थापित करने की चीन की घोषणा का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह चीन के होतान विभाग में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा सुन चुका है। एक प्रश्न के उत्तर में कल मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इन तथाकथित प्रांतों के अधिकार क्षेत्र का कुछ हिस्सा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में पड़ता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस क्षेत्र के भारतीय अंचल में अवैध चीनी अधिकार को कभी भी स्वीकृति नहीं दी है। वहीं चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की यारलोंग सांगपो नदी पर बन रही पनबिजली परियोजना से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में श्री जायसवाल ने कहा कि नदी के जल को इस्तेमाल करने के अधिकार के साथ निचले तटवर्ती देश के रूप में भारत ने अपनी चिंताओं को दोहराया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नियमन 2025 का मसौदा जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मसौदे पर लोगों से सुझाव और उनके विचार मांगे गए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम 2023 को अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी। इस अधिनियम में व्यक्तियों की सहमति, डाटा प्रसंस्करण निकायों और प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। माईगॉव पोर्टल के माध्यम से मसौदा नियमों पर 18 फरवरी तक सुझाव और विचार दिए जा सकते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने पिछले 3 दिनों में अपने कई परीक्षणों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की है। इस महीने तक ट्रायल जारी रहेंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में स्वचालित दरवाजे, बेहद आरामदायक बर्थ और ऑनबोर्ड वाईफाई जैसी सुविधाएं हैं। बिहार में गुरु गोविंद सिंह की 398वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव आज से पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में आरंभ होगा। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीडिया प्रभारी गुरविंदर सिंह ने कहा कि तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से विशाल प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्य प्रकाश पर्व समारोह 6 जनवरी की मध्यरात्रि में आयोजित होगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सचिव वी श्रीनिवास के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल ने बिहार में लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन और कामकाज का जायजा लिया। 5 सदस्यीय केंद्रीय बल ने पटना समाहरणालय का दौरा कर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम और बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन देखा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।